हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज प्रथम अध्याय का 39वां श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्मे नस्ते कुलं कृष्णं अधर्मो विभवत्युत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते, गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्लोक संख्या 39-43। आज 39वां श्लोक की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। 39वें श्लोक से तो 43 श्लोक संख्या 43 ये पांच श्लोक में अर्जुन कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, कृष्ण के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं। और आर्ग्यूमेंट्स का जो विषय है, जो वाद का विवाद का जो विषय है, वो विषय क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली ट्रेडिशन। परंपरा जो हमारी है, धार्मिक परंपराएं, पारिवारिक परंपराएं, फैमिली ट्रेडिशंस, ये सब नष्ट हो जाएगी। और ये नष्ट हो जाएगी तो क्या लाभ युद्ध करके, ऐसा युद्ध करने से क्या लाभ? जब परंपरा ही नष्ट हो जाएगी तो व्हाई टू फाइट, युद्ध क्यों करें? सब नष्ट ही होना है, इसलिए मैं युद्ध नहीं करना चाहता। अर्जुन की जो कृष्ण के साथ जो आर्ग्यूमेंट्स चल रही है वो किस लिए चल रही है? युद्ध नहीं करने के लिए। मैं क्यों युद्ध करूं? युद्ध करने से परंपराएं नष्ट हो जाएगी, पारंपरिक जो हमारे पारिवारिक जो परंपराएं है, परिवार में जो धार्मिक परंपराएं चलते आ रही वो भी नष्ट हो जाएगी, तो क्या लाभ इससे? इसलिए ये युद्ध करने से कोई लाभ नहीं है। तो इस बात को कृष्ण को समझाने के लिए अर्जुन ये पांच श्लोक कह रहे हैं। तो पांचों श्लोक में हम इस विषय को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज जो पहला श्लोक है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत, अर्थात कुल का नाश होने पर क्या होता है? सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। कुल का नाश होने पे क्या हो जाता है? जो परंपराएं है वे नष्ट हो जाती है, सनातन परंपरा नष्ट हो जाती है, जो चलते आ रहा है परंपरा में वो सब क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। सो धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो विभवत्युत, और इस तरह शेष कुल धर्म भी नष्ट हो जाता है, सब नष्ट ही हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। तो कुल का नाश, इस विषय पर अर्जुन ने यहां पे जो आर्गुमेंट शुरू की है, इसका उत्तर आप अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा आज हम क्या बोल रहे हैं। जिस दिन हम उसका उत्तर बोलेंगे उस दिन भी प्रश्न का स्मरण करवाएंगे। आज ये प्रश्न है, अर्जुन की आर्गुमेंट है कि कुल धर्म नष्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसका उत्तर कृष्ण कहां देंगे? इसका उत्तर कृष्ण देंगे दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक में, 2.45 एंड 2.46, दूसरे अध्याय का 45वां और 46वां श्लोक। ये दो श्लोक में कृष्ण अर्जुन के इस आर्ग्यूमेंट का उत्तर देने वाले हैं। आर्ग्यूमेंट क्या है, क्या है आर्ग्यूमेंट इस समय? जब सब नष्ट ही हो जाएगा, फैमिली लाइफ ही खत्म हो जाएगा, तो युद्ध करके क्या लाभ है? फैमिली लाइफ समाप्त हो जाएगा युद्ध करने से, तो ऐसा युद्ध क्यों करूं? इसका उत्तर 2.45 एंड 2.46, दूसरे अध्याय का 45वां 46वां श्लोक, उसमें कृष्ण उत्तर देंगे। जब वो श्लोक में उत्तर शुरू होगा उस समय भी हम आपको प्रश्न का स्मरण करवाएंगे कि इसका प्रश्न पहले अध्याय में था, बट बेटर आप उसको ध्यान में रखिए कि प्रश्न ये कि नष्ट हो जाएगा तो फैमिली लाइफ समाप्त हो जाएगा तो क्या लाभ। तो कुल का नाश यहां पे 6 स्तर पे ये कुछ स्तर बताए गए हैं, क्रमशः कैसे कुल का नाश होता है। अर्जुन को जो चिंता सता रही है इस समय, कुल का नाश, फैमिली लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो वो किस कैसे स्तर होते हैं? तो पहला स्तर जो है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया है, पहले स्तर पे बताया गया है परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मृत्यु, अर्थात सारे के सारे मारे जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण तातश्री, द्रोणाचार्य और बहुत सारे ससुरान मात सब कह कह, पहले कहा गया है ना ससुर जी है उनके, सब वरिष्ठ है, वृद्ध है, ये सब मारे जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। तो परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का मृत्यु हो जाएगा और अधर्म बढ़ेगा। दूसरी बात कही गई है, कुल धर्म नष्ट होने से अधर्म बढ़ेगा। धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम, धर्म नष्ट होने से अधर्म बढ़ेगा, इसका अर्थ है सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अर्जुन को इस समय जो चिंता सता रही है वो चिंता क्या है? प्राचीन जो उनकी कुल धर्म की रीति रिवाज चलते आ रहे हैं, उनके कुल के जो रीति रिवाज पहले से जो चलते आ रहे हैं वे नष्ट हो जाएगी, इसकी चिंता अर्जुन को इस समय है। प्राचीन है ना, जैसे उदाहरण कल संक्रांति है, अब कितने प्रेम से सब लोग पतंग उड़ाते हैं, कुछ दिन बाद बंद हो गया पतंग उड़ाना तो चिंता हो जाएगी, अरे पतंग उड़ाना बंद हो गया, रीति रिवाज बंद हो गया। और जो भी कुछ रीति रिवाज है धीरे धीरे एक एक करके, जैसे कई हमारे उत्सव है, कई फेस्टिवल्स आते हैं, उस फेस्टिवल में हम 15 साल पहले जो मनाते थे आज वैसा नहीं मनाते हैं। क्या हो गया है, आज बहुत ज्यादा कमर्शियल हो गया है, उसमें का जो आध्यात्मिक विषय था, जो स्पिरिचुअल विषय था, वो समाप्त हो गया है और थोड़ा सा कमर्शियल या सोशल फेस्टिवल ज्यादा बन गए, सामाजिक बन गए या व्यावसायिक बन गए, परंतु आध्यात्मिकता उसमें की धीरे 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 कम होती जा रही है। तो अर्जुन की चिंता थी कि क्योंकि वरिष्ठ बुजुर्ग नहीं हो गए तो फिर समझाएगा कौन, आध्यात्मिकता को कौन समझाएगा। कुल गुरु वंश के विषय में श्री कृष्ण ने भी यही चिंता जताई थी, भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को समझाया था। ऐसी बात नहीं है कि ये चिंता आज ही अर्जुन को हो गई और अर्जुन अचानक से बोलने लगे अरे कृष्ण ये सब नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। कृष्ण को ये चिंता इसके पहले हुई थी, कब हुई थी, जब युद्ध का निर्णय लिया गया कि अब युद्ध अटल है, तब भी कृष्ण को यह चिंता हुई कि कुल धर्म नाश हो जाएगा, रीति परंपराएं नष्ट हो जाएगी, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, बड़े बुजुर्ग नहीं रहेंगे मार्गदर्शन के लिए, ये सब हो जाएगा। ये चिंता कृष्ण को अर्जुन के पहले ही हुई थी, इसलिए कृष्ण ने क्या किया था, शांति प्रस्ताव। कृष्ण ने क्या किया, वो धृतराष्ट्र के पास गए और उनको शांति प्रस्ताव दिया। देखिए जब शांति प्रस्ताव सभा में कृष्ण रख रहे थे और दुर्योधन को समझा रहे थे, धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, दुर्योधन ने कुछ सुना और सुनते से क्या कहा, सुनते से दुर्योधन ने कहा ये ग्वाला हमको समझाएगा, ये गौवा चुराने चराने वाला ग्वाला, साधारण दूध बेचने वाला, हमको समझाएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हम क्षत्रिय है राजा है और हमको ये समझा रहा है, शांत हो जाओ। दुर्योधन ने कृष्ण को कहा, फिर भी कृष्ण बोलते रहे। फिर दुर्योधन ने वार्निंग दिया, अभी एक भी शब्द मुख से निकला ना तो यहां से बाहर कर दूंगा, फिर भी कृष्ण बोलते रहे। तो अंततः दुर्योधन ने क्या कहा, दुर्योधन ने अपने सैनिकों को कहा पकड़ो इस ग्वाले को, बंदी गृह में डाल दो इसको, ज्यादा बात कर रहा है, हमसे ज्यादा बात कर रहा है। लेकिन कृष्ण देखिए क्या नम्र स्वभाव है, कितनी नम्रता है भगवान में, भगवान है तीनों लोगों के स्वामी है, सो हम्बल, ह्यूमिलिटी देखिए। इतना अपमान हुआ, अपमान को सहन करना आसान है क्या, हमको तो नींद नहीं आएगी कई दिनों तक, यदि कोई हमारा अपमान कर दे तो सालों तक हमको नींद नहीं आएगी, और प्रति वर्ष उसी दिन वो घटना का स्मरण होगा कि पिछले संक्रांति के दिन इसने ऐसा बोला था वर्षानुवर्ष मृत्यु तक हमको स्मरण रहेगा। परंतु भगवान देखिए इतना अपमान कृष्ण का किया, फिर भी कृष्ण धृतराष्ट्र के पास गए। जो अर्जुन की इस श्लोक में चिंता है वही चिंता को लेकर वे धृतराष्ट्र के पास गए। नम्रता देखिए, नम्र स्वभाव होना चाहिए, स्वभाव में ह्यूमिलिटी नम्र होना बहुत आवश्यक है। यह नम्र स्वभाव ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ना, द फर्स्ट स्टेप टू गेन नॉलेज इज ह्यूमिलिटी। हरे कृष्णा, कंफर्म हो गया प्रभुपाद जी क्या होते ज्ञानी बनना चाहते, किसी भी विषय का ज्ञान हो, आध्यात्मिक विशेषकर आध्यात्मिक, इवन भौतिक ज्ञान भी प्राप्त करना हो तो नम्र स्वभाव होना चाहिए। नम्र स्वभाव के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान स्वयं अपने इस स्वभाव से, इस अपने लीला से, इस ऐसे कर्म से हमको बताते कि देखिए मैं भी ऐसा ही करता हूं, ऐसी बात नहीं है कि भगवान केवल प्रवचन दे रहे हैं और आचरण में कुछ है नहीं, ऐसी बात नहीं है। भगवान स्वयं आचरण में भी वे ला रहे हैं। ये भक्तों का भी स्वभाव होता है, भक्तों में भी ये नम्र भाव होता है, विनम्र स्वभाव होता है। कई बार हम इवन साधारण जीवन में, सामाजिक स्तर पे भी, सामाजिक जीवन में भी हमको कई लोग ऐसे महानुभाव मिलते हैं जिनके स्वभाव नम्र है, जिनका नम्र भाव है, बड़े प्रेम से बात करते हैं, समझते हैं, और यदि किसी ने उनका अनादर किया, अपमान किया, तो उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। डाइजेशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, नहीं, डाइजेस्ट करने की जो कैपेसिटी है शुड बी वेरी स्ट्रांग, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। वो कैसे होती है? धीरे धीरे अपने स्वभाव को नम्र बनाते जाए, बनाते जाए। एक भौतिक उदाहरण है परंतु बहुत ही प्रभावी है। आप सब जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सब जानते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वो फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हो रहा था, डिग्री जो देते हैं सभी को, तो उस प्रोग्राम को आयोजित किया गया था यूनिवर्सिटी के द्वारा। तो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्तियों को बुलाया गया था, 5 प्रमुख व्यक्ति थे, इसलिए स्टेज पे 5 चेयर रखी गई थी। एक चेयर उसमें की बहुत विशेष पड़ी क्योंकि प्रेसिडेंट कलाम साहब आने वाले थे, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी विशेष चेयर ऐसी रखी। सब लोग आ गए, फिर वाइस क्या कहते हैं चांसलर, वाइस चांसलर, चांसलर, वाइस चांसलर, चांसलर मिस कलाम और बाकी सब, सबके लिए चेयर रखी थी। सब लोग आए, जैसे ही अंदर प्रवेश किए, सब लोग पांचों के पांचों जो प्रमुख व्यक्ति थे वो स्टेज पे आए, और स्टेज पे आते ही सब धीरे धीरे बैठने के लिए बैठने तो लगे, परंतु कलाम साहब की जो कुर्सी थी, चेयर थी, उस पे वो बैठे नहीं। उन्होंने वो चेयर हटाई और जो ऑर्गेनाइजर था वहां तक खींचते लेके गए, बोले ये चेयर बड़ी क्यों है, ये चेयर डिफरेंट क्यों है, व्हाई इज दैट सो, क्यों ऐसा है, सेम चेयर होनी चाहिए, सब एक ही स्तर पर बैठेंगे। तो उन्होंने वो चेयर को चेंज करवा लिया और साधारण कुर्सी पे जो सबकी थी उसमें बैठे। साधा उदाहरण है लेकिन बहुत कुछ बताता है, सिंपल बात है, परंतु यहां पे ह्यूमिलिटी, जो नम्र स्वभाव है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज संपूर्ण विश्व में उनका नाम है और ज्ञान में भी सबसे आगे रहे हैं, है ना। बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, बहुत हम्बल थे, बहुत ज्ञानी थे, बड़े भक्त थे, सभी को प्रिय थे, है ना, किसी से कोई वैर भाव नहीं था। कृष्ण जो हमको भगवद गीता में कह रहे हैं यही बात है, कृष्ण बड़ी नम्रता से कह रहे हैं। इतना उनको बोला गया कि तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो ऐसे हो, फिर भी कृष्ण ने विषय को नहीं छोड़ा, गुस्सा नहीं आया उनको, क्रोध नहीं आया, नहीं तो हमारे मुख में से तुरंत दूसरा शब्द निकल जाए, है? कोई हो बोला तो हम तुरंत हाँ बोल देते हु का जवाब हाँ से, है ना। तो उनका, कृष्ण भगवान ने इस प्रकार से बात नहीं की, वे गए धृतराष्ट्र को समझाने, वहीं पे ही धृतराष्ट्र को क्या कहते हैं कृष्ण, देखिए जो अर्जुन इस श्लोक में कह रहे हैं वही बात कृष्ण ने धृतराष्ट्र को कई पहले बता दी थी। शांति दूत जब बन के गए थे उस समय, तो धृतराष्ट्र को वे कहते हैं, हे राजन, हर प्रकार से गौरवान्वित इस वंश में आपके कारण कोई अनुचित बात न हो जाए। आपका जो वंश है बड़ा गौरवान्वित है, बहुत नाम है, पूरे ब्रह्मांड में आपका नाम है, आपके वंश का नाम है, परंतु आपके कारण कहीं उसका नाम खराब न हो जाए, कहीं कोई अनुचित बात नहीं होनी चाहिए। कौरवों में गुप्त या प्रकट रूप से कोई यदि असत व्यवहार होता है, असत अर्थात बुरा व्यवहार होता है, अधर्म होता है, या किसी प्रकार का पाप होता है कौरवों के द्वारा, प्रकट रूप में एक्चुअल, थ्योरेटिकल नहीं, एक्चुअल यदि कोई पाप होता है तो उसको रोकना आपका प्रथम कर्तव्य है। ये आपका प्रथम कर्तव्य है, आप इसको रोकिए, अन्यथा क्या हो जाएगा? अन्यथा सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा, कुल परंपराएं नष्ट हो जाएगी। ये कृष्ण ने पहले ही बोला था, दुर्योधन आदि आपके पुत्र क्रूर पुरुषों जैसे आचरण कर रहे हैं, क्रूर हो गए, क्रूर हो गए, वे समझ ही नहीं आ रहा है उनको। उनको यह भी बात नहीं समझ में आ रही है कि यदि युद्ध हो गया तो कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, क्रूर बन गए दुर्योधन और कौरव जो उनके पक्ष में है, वे सब क्या हो गए? क्रूर हो गए हैं। अपने खास भाइयों के साथ, अपने विशेष बंधुओं के साथ वे अधर्म कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, है ना, अशिष्ट पुरुषों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सदाचार तो बिल्कुल नहीं है, अत्याचार है। तो आप उनको समझाइए, आपको यह पता नहीं है कि इसके कारण कौरवों पे भयंकर आपत्ति आ सकती है, कुरु वंश पे भयंकर आपत्ति आ सकती है। ये कृष्ण ने ही बोला था जब वे शांति दूत बन के गए। आज इस समय जब युद्ध की स्थिति आई है तो यहां पे अर्जुन वही बात कह रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि क्या लाभ ये युद्ध करके, कुल धर्म तो नष्ट हो जाएगा। अब आप हमको बताइए, दोनों ही सेम बात कर रहे हैं, एक ही बात कर रहे हैं? दोनों, कृष्ण भी वही बात कर रहे हैं, अर्जुन भी वही बात कर रहे हैं, तो अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? बोलिए। हाँ वो ठीक है, उसको यदि हम अर्जुन को और भगवान को भगवान के रूप में देखते हैं, अर्जुन को महापुरुष के रूप में देखते हैं, तो ये तो एकदम ठीक है। परंतु हमारे समझ के लिए, हमारे लिए जो इस स्थिति जो उत्पन्न हुई है, उस स्थिति जन्य उदाहरण दीजिए, स्थिति जन्य आप समझाइए कि ऐसे कैसे हो गया। वही बात दोनों कर रहे हैं, कृष्ण भी वही बात कर रहे हैं, अर्जुन भी वही बात कर रहे हैं, और दोनों का बात का अर्थ क्या है? कुल धर्म नष्ट हो जाएगा। बताइए। हाँ हाँ हाँ, एकदम सही उत्तर बोले हैं। देखिए दोनों की स्थिति देखिए, हम दोनों का फर्क इसलिए पूछ रहे हैं कि दोनों के अंडरस्टैंडिंग में, समझ में फर्क है। आप समझिए, अर्जुन भी वही बात कह रहे हैं, कृष्ण भी वही बात कह रहे हैं, परंतु दोनों के उस बात कहने में फर्क है, डिफरेंस है, समझ में डिफरेंस है। अर्जुन मोहग्रस्त हो चुके हैं, अर्जुन को धर्म अधर्म यह विषय की चिंता नहीं हो रही इस समय, इस समय चिंता हो रही है परिवार की। और कृष्ण को क्या लग रहा था? धर्म की रक्षा। यहां पे अर्जुन इसलिए बोल रहे हैं कि परिवार की रक्षा, और कृष्ण इसलिए बोले थे कि धर्म की रक्षा। दोनों सेम एक ही बात बोले हैं, परंतु कृष्ण ने इसलिए बात बोली थी कि धर्म की रक्षा होगी, और अर्जुन ने इसलिए यह बात बोली है कि परिवार की रक्षा होगी। इसलिए एक ही बात दोनों जरूर बोले हैं, परंतु डिफरेंस है, अंतर है। तो कौन सी बात करनी चाहिए? धर्म की बात करनी चाहिए, परिवार को धार्मिक बना देना चाहिए। दैट सिंपल, नहीं? परिवार को धार्मिक बना दीजिए तो परिवार की बात और धर्म की बात एक ही हो जाएगी। यदि परिवार धार्मिक नहीं है तो समस्या हो जाती है। सो धर्म अर्थात क्या? धर्म, धार्मिक बनने का अर्थ क्या है? धार्मिक बनने का अर्थ है नम्र बने, कनेक्शन में रहे भगवान के साथ, डेली अपने आप को पूछे, हर मिनट हर क्षण अपने आप को पूछे, क्या हम कनेक्टेड हैं? पूछिए प्रश्न, प्रति क्षण पूछिए अपने आप को, क्या मैं कनेक्टेड हूं कि डिस्कनेक्ट हो गया है? कुछ समय के लिए नेटवर्क के बाहर गया, डिस्कनेक्ट हो गया, बैटरी डाउन हो गई, क्या हुआ? कुछ भी हो सकता है, बैटरी डाउन हो सकती है, नेटवर्क जा सकता है, पर पूछिए जरूर। यदि हम पूछेंगे कि क्या मैं कनेक्टेड हूं, तो यदि मैं नहीं भी होगा तो तुरंत कनेक्ट हो जाऊंगा। ये प्रश्न बहुत पूछना बहुत आवश्यक है स्वयं को। यदि हम ये प्रश्न पूछेंगे तभी जाके हम अपने स्वभाव को नम्र सदाचारी बना पाएंगे, अन्यथा ये सब बहुत कठिन है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, आसान नहीं है, आसान नहीं लगता है। आसान कब लगेगा हमको? जब हम कनेक्टेड रहेंगे। आसान कब लगेगा? जब हम कनेक्टेड रहेंगे, कनेक्शन होगा हमारा। तो जरा थोड़ी देर के भी लिए डिस्कनेक्ट हो जाते हैं ना, तो प्रश्न पूछिएगा। इतना जरूर याद कीजिएगा इस श्लोक को कि नहीं नहीं मुझे प्रश्न पूछना है। दिन में प्रतिक्षण नहीं पूछ सकते हैं तो प्रति आवर पूछिए, एक घंटे में एक बार पूछिए, एक घंटे में एक बार नहीं पूछ सकते तो दो घंटे में एक बार पूछिए। परंतु दिन भर में, जो दिन में 12-15 घंटा हम जागृत अवस्था में होते हैं ना, सोते नहीं है, उस अवस्था में कम से कम 6-7 बार पूछ लीजिए प्रश्न अपने आप को, कनेक्टेड है कि नहीं है, कनेक्टेड है कि नहीं है, कनेक्टेड है कि नहीं है, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कृष्ण धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, ये अशिष्टों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, अपने धार्मिक जो बंधु है, जो धर्म का आचरण करते हैं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, उनको जरा भी उनका अधिकार प्रदान नहीं कर रहे हैं, और ये सब क्यों कर रहे हैं? तो लोभ हो गया है, भयंकर लोभ हो गया है। लोभ के कारण अत्याचार बढ़ता है, लोभ के कारण व्यक्ति अशिष्ट हो जाता है, लोभ के कारण व्यक्ति दुराचारी हो जाता है, लोभ के कारण यह सब कुछ हो रहा है। आप उनको रोकिए महाराज, रोकिए अपने आप को। यह प्रश्न हम अपने आप से पूछते हैं, कहते हैं, जो कृष्ण धृतराष्ट्र को कह रहे हैं, हम कह सकते हैं कि अपने आप को रोकिए, ब्रेक लगाइए, कहीं ना कहीं ब्रेक लगाइए। ब्रेक होना बहुत जरूरी है। हमने पहले भी इसकी चर्चा की थी लास्ट सेशन में। आप कार सब लोग चलाते हैं, यदि आपके कार को ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा? तो ये मनुष्य जीवन है, इसको ब्रेक नहीं लगाएंगे? इसको कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए? इसको भी तो ब्रेक होना चाहिए। जो साधारण कार या मोटरसाइकिल होती है, इवन साइकिल भी होती है, तो पहले चेक करते हैं ब्रेक है कि नहीं, उसको कंट्रोल है कि नहीं है। तो ये मनुष्य जीवन रूपी इतना बड़ा व्हीकल है, इतना बड़ा वाहन है, इसको हम ब्रेक नहीं लगाने चाहिए? डेली चेक नहीं करना चाहिए ब्रेक है कि नहीं है? रोज चेक करना चाहिए कि ब्रेक है कि नहीं है। ब्रेक कौन से है? मनुष्य जीवन का ब्रेक कौन सा है? अभी आपने ये उत्तर दिया तो समझ जाएंगे कि सबके पास ब्रेक है नहीं तो बिना ब्रेक की गाड़ी चल रही है तो स्पीड से मत भगाइए, स्लो चलाइए, फिर भी रिस्क हो जाती है। ब्रेक कौन सा है? विवेक नाम, रिमेंबरेंस, यू कैन से रिमेंबरेंस, स्मृति, कनेक्शन की स्मृति, कनेक्शन का रिमेंबरेंस, इंद्रियों पे संयम, वही तो ब्रेक है। तो वो ब्रेक अर्थात क्या, कैसे वो ब्रेक लगता है? क्या? धार्मिक विचार, विवेक बुद्धि, कनेक्टिविटी, शास्त्र, स्क्रिप्चर्स, इंस्ट्रक्शंस, आचरण। एकदम सादा एक शब्द है, हिंदी भाषा का एकदम सादा शब्द है, संस्कृत भी नहीं है, इंग्लिश भी नहीं है, एकदम सरेंडर, वैराग्य, संयम, मन, अरे मन, ये आपने इतना बड़ा उत्तर दे दिया कि वो मन की तो चाहे जैसी व्याख्या कर सकते हैं हम। वो मन का ही एक गुण है, वो जो ब्रेक है ना, वो मन का ही एक गुण है। सदाचार, जिज्ञासा, हरिनाम, प्रार्थना, परमात्मा से कनेक्शन या मिलन, आत्मसमर्पण। बहुत बड़ी बड़ी, प्रभु जी आपके पास तो सुपर ब्रेक है, आप सभी के पास सुपर ब्रेक है। आप इतना सुंदर और इतना एकदम समर्पक उत्तर दे रहे हैं, वेरी वेरी क्या कहते हैं, टैलेंटेड आंसर, वेरी इंटेलेक्चुअल आंसर है ये सब। मैं तो एकदम साधारण आंसर एक्सपेक्ट कर रहा हूं एकदम। शरणागति, कंट्रोल, वही उसी को कंट्रोल मीन्स कैसे, विनम्रता। अभी कुछ रह गया तो वो बोल दीजिए, सब तो हो गया। संतुष्टि, संतुष्ट व्यक्ति ही ब्रेक लगा सकता है। आई एम सेटिस्फाइड, मिला है ठीक है, नहीं मिला है ठीक है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड, संतुष्ट है। मिला है तो भी संतुष्ट है, नहीं मिला है तो भी संतुष्ट, सेटिस्फाइड है, मिलेगा, नहीं मिला है तो मिलेगा। और मिला है तो ठीक है, काफी, इट्स ओके। एक व्यक्ति था, हम बचपन में छोटे छोटे थे तो स्कूल में या टीचर हमको एक स्टोरी बोलते थे, ये आप सभी को पता होगी, इसलिए मैं एकदम संक्षेप में बोलता हूँ। एक राजा था और राजा ने एक दिन अपने राज्य में वो क्या कहते हैं उसको, डिंडोरा पीटा और क्या कहा, ये कहा कि आज एक स्पर्धा होने वाली है, कॉम्पिटिशन होने वाली है, उसमें जो व्यक्ति जितना भागेगा उतनी भूमि उसको दी जाएगी, गिफ्ट, जितना भागेगा उतनी भूमि उसको गिफ्ट दी जाएगी। सब भागने लगे, कोई कितना भागा, कोई कितना भागा, एक व्यक्ति भाग ही रहा था, थक गया, कितनी बार गिर गया, फिर खड़ा होके फिर दम लग गया, बहुत पीछे देखता है कि कई किलोमीटर जगह उसने ले ली, भूमि ले ली, फिर भी सोच रहा नहीं अभी और भागना है, और भागना है, और भागना है, और भागना है, और भागना है। अंततः वो गिर के उसका मृत्यु हो गया। क्या लाभ हो गया उसका, इतना भागा और क्या हो गया, मृत्यु हो गया। बताइए, ब्रेक नहीं लगाया, संतुष्टि नाम का ब्रेक, ब्रेक लगाना अर्थात क्या, सेटिस्फाइड, नहीं नहीं ठीक है, मुझे नहीं चाहिए, आई एम सेटिस्फाइड, ठीक है। इसके ऊपर कभी कई बार उप प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रभु जी यदि हम संतुष्टि मान ले, संतुष्ट रहे तो संसार हमको जीने नहीं देगा। इतनी डेडली कॉम्पिटिशन है, हर कोई कहता है कि कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन फर्स्ट फर्स्ट, और आप कहते हैं कि संतुष्टि। गीता का उपदेश संतुष्टि, कैसे समझे इसको, इस प्रिंसिपल को अप्लाई कैसे कीजिए, आचरण में कैसे लाए, है ना। संतुष्टि को आचरण में लाने के लिए वैसी स्थिति ही नहीं है, ऐसा बोला जाता है ना। कंपटीशन के युग में, स्पर्धा के युग में कोई व्यक्ति संतुष्ट रहे तो उसको क्या कहते हैं, उसको कभी लेजी कहते हैं, कभी मंदबुद्धि कहते हैं, कभी क्या क्या कहते हैं, है ना। दौड़ ही नहीं रहा है, भाग ही नहीं रहा है, अरे बीपी, डायबिटीज, स्ट्रेस, ये नहीं है आपको, अरे कैसे, ऐसे कैसे नहीं है आपको, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, कुछ भी नहीं है, ये इम्पॉसिबल, ऐसे कैसे, बेवकूफ है ऐसा सोचते। क्योंकि भागने से, इतना भागने से, इतनी स्पर्धा करने से स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, और फिर इससे रिलेटेड बीपी, ब्ला 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 सब कुछ। परंतु अब ये विषय पे हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो फिर पॉजिटिव निगेटिव यस नो सब होगा, वो डिफरेंट इश्यू है। हम एक ही सार रूप में कहेंगे कॉम्पिटिशन चाहिए, स्पर्धा चाहिए, लेकिन किसके साथ? स्वयं के साथ स्पर्धा चाहिए, मेरी अपने साथ स्वयं के साथ स्पर्धा चाहिए। मैं अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते रहूं रोज, कल कितने बार कनेक्ट था भगवान के साथ ऐसा पूछूं तो पता चले 4-5 बार ही कनेक्टेड था, बाकी 500-700 बार तो डिस्कनेक्शन था। तो आज मैं क्या करता हूं, मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करता हूं कल का। अपने स्वयं के साथ कॉम्पिटिशन कीजिए। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं, भगवद गीता में आगे कहेंगे, भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति है ना, ये मम माया दुरुत्तया, ये सब मेरी एक्सटर्नल एनर्जी है, ये जो सारा संसार है, सारा क्रिएटिविटी है, सारा क्रिएशन है, सारा निर्माण है, ये क्या है? ये मेरी शक्ति है। ये मेरे शक्ति को पार करना आपके लिए साधारण बात नहीं, इम्पॉसिबल, दुरुत्तया, बहुत डिफिकल्ट है आपको, इट्स वेरी डिफिकल्ट। परंतु हम इसी में तो है, करना तो है, भगवान ने ऐसे जरूर बोला है पर हमको करना तो है ना, तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। इस क्रिएशन में ही हम जन्म लिए हैं, इस धरती पे ही हम आए हैं, तो करना तो पड़ेगा, क्या करें, क्या करें? कॉम्पिटिशन को कैसे फेस करें या स्वयं के साथ कैसे कॉम्पिटिशन करें? कुछ आइडिया होगी? हम बहुत कुछ सुनते हैं पर भगवत गीता क्या कहती है हमको, भगवत गीता में इस विषय में क्या कहा गया है, भगवत गीता भगवान धृतराष्ट्र को क्या समझा रहे हैं, अर्जुन को क्या समझाएंगे, तो दूसरे अध्याय में हम बहुत विस्तृत रूप में समझने वाले हैं, बहुत डिटेल्स है। कृष्ण 45-46 में जो समझाते हैं इट्स एकदम माइन्यूट डिटेल्स है इसके उत्तर के रूप में। तो हमको अपने स्वयं के साथ स्पर्धा करनी है, हमको समाधानी रहना है, सेटिस्फाइड रहना है। कैसे सेटिस्फाइड रहेंगे? हम सेटिस्फाइड तभी रहेंगे जब हम पूरा रिलेशनशिप एज ए होल, संपूर्ण संबंध ज्ञान को प्राप्त करेंगे, संपूर्ण संबंध ज्ञान को समझेंगे। जैसे ये सारा जो क्रिएटिविटी संपूर्ण ब्रह्मांड है, इसमें मैं हूं, मेरे पड़ोसी है, मेरे कॉम्पिटिटर है, मैं जिनके साथ स्पर्धा कर रहा हूं वो भी तो है, ये संपूर्ण क्रिएशन, संपूर्ण प्रकृति, ये क्या है, इसका मेरे साथ क्या संबंध है, और इसी प्रकृति का जिसने ये सब कुछ बनाया, मुझे भी बनाया, प्रकृति को भी बनाया, ऐसे ईश्वर के साथ क्या संबंध है, प्रकृति का ईश्वर के साथ क्या संबंध है, ये कॉम्पिटिशन का भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरे कॉम्पिटिटर का भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है, मेरा और मेरे कॉम्पिटिटर का क्या संबंध है, और ये संबंधों पे हम जो एक्शन लेते हैं डेली, जो हम कर्म करते हैं रोज, जो कार्य करते हैं वो रोज डेली एक्टिविटीज का क्या संबंध है, मैं हूं, मेरा कॉम्पिटिटर है और मेरा कर्म है, तीन बातें आ गई, मैं, मेरा कॉम्पिटिटर, मेरा एक्शन अर्थात मेरे कर्म, ये सब किससे आया, कैसे उत्पन्न हुआ, ये सब द क्रिएटर से, जो निर्माण जिसने सब कुछ किया है, ईश्वर, इसी ने सब कुछ निर्माण किया है, तो इससे ये सब कुछ निर्माण हुआ है, तो ये तीनों का उसके साथ क्या संबंध है, मेरा, मेरे कॉम्पिटिटर का, मेरे कर्मों का, वो ईश्वर के साथ क्या संबंध है, और उसके भी आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो टाइम फैक्टर है, समय, ये समय कैसे हमारे ऊपर प्रभावी हो रहा है, तीन चार बातें हैं, ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म, दीज आर द फाइव सब्जेक्ट मैटर ऑफ भगवद गीता, ये भगवद गीता के पांच विषय है। इसमें हमको यही समझाया जाता है कि आप कौन हो, आपका सबके साथ क्या रिलेशनशिप है, सबके साथ, और आपके ऊपर समय कैसा प्रभावी हो रहा है, यदि हम ये बात समझ जाएंगे, ये विषयों को हम समझेंगे और इनका आपस में रिलेशनशिप, इसलिए भगवद गीता को क्या कहते हैं, संबंध ज्ञान। भगवद गीता कौन सा ज्ञान है? संबंध ज्ञान है, संबंध ज्ञान। तो इस विषयों को हम जैसे समझेंगे, समझते समझते जाएंगे, वैसे वैसे हम ये संतुष्टि सेटिस्फाई नाम का ब्रेक लगाना सीखते जाएंगे स्लोली स्लोली। एज वी ग्रो इन रिलेशनशिप विद गॉड, इन रिलेशनशिप विद कृष्णा, इन रिलेशनशिप विद क्रिएटिविटी, तो क्या होगा, हम स्लोली स्लोली ये ब्रेक लगाना सीख जाएंगे संतुष्टि रूपी, सेटिस्फाई। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो भगवान ये समझा रहे हैं, उसको बताइए हे धृतराष्ट्र महाराज, वो दुर्योधन को बताइए टू बी सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट रहिए, ब्रेक लगाइए, आप असंतुष्ट इतना लोग उसको हो चुका है कि वो अपने सदाचारी बंधुओं को, बंधुओं के ऊपर अत्याचार कर रहा है। जब कृष्ण को यह समझ में आया कि बात नहीं बन रही है, धृतराष्ट्र की बात नहीं चल रही है, तब स्वयं श्री कृष्ण दुर्योधन के पास गए, दुर्योधन को बोलने लगे कि हे कुरु नंदन, मेरी इस बात को समझो, हे दुर्योधन मेरी बात सुनो तो सही। दुर्योधन कह रहा है इसको पकड़ो जेल में डालो, फिर भी कृष्ण कह रहे हैं अरे कुरु नंदन, देखिए कितना बड़ा आदर युक्त नाम लिया है उन्होंने, हे कुरु नंदन, ऐसे परंपरा के आप नंदन हो, अर्थात पुत्र हो, संतान हो, जो परंपरा का तीनों लोगों में नाम है, मेरी बात तो सुनो। सादी सी बात कह रहा हूं, इसमें यदि तुम मेरी बात सुनोगे तो इसमें तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। हाँ, तो तुमने बड़े बुद्धिमानों के कुल में जन्म लिया है, बहुत बहुत ही बुद्धिमान ज्ञानी भक्त ऐसे कुल में आपने जन्म लिया है, तुम जो कुछ करना चाहते हो, जो भी कुछ तुम करना चाहते हो, वे तो वो कर्म तो वे लोग करते हैं जो दुष्ट दुराचारी आसुरी अधर्मी पापी अत्याचारी होते हैं, पर तुमने तो ऐसे कुल में जन्म लिया है। कभी कभी हम लोग बात में कहते हैं ना, ओ यू आर सो ग्रेट, ओ यू आर जीनियस, आप इतने बुद्धिमान हो, बहुत होशियार हो, ये ऐसी मिस्टेक कैसे कर दिया आपने? पहले क्या बोलते हैं, यू आर सो ग्रेट, और फिर एक छोटी सी बात बोलते, इतनी मिस्टेक कर दिया आपने। ऐसे ही कृष्ण बोल रहे हैं, हे कुरु नंदन, हे दुर्योधन, आप तो ऐसे कुल से हो और आपके परिवार को तो सुख मिलेगा, आप ये क्या कर रहे हो, ये काम तो दुष्टों का है, असुरों का है, पापियों का है, अत्याचारियों का है, दुराचारियों का है, आप ये क्यों कर रहे हो। इस प्रकार से जब कृष्ण समझाते हैं इस भाव से कि दुर्योधन कुछ समझ जाएगा, परंतु तब तक दुर्योधन ने कृष्ण को बंदी बनाने की तैयारी कर ली। क्योंकि दुर्योधन समझ गया ये बाज नहीं आ रहा है, बोलते ही जा रहा है, मैं इतना अपमान कर रहा हूं फिर भी बोलते जा रहा है, अब तैयारी कर ली इनको जेल में डालने की, इनको बंदी बनाने की तैयारी कर रही है। अब यहां पे हमको ये समझ में आ रहा होगा कि दुर्योधन जिस प्रकार कुरुवंश को कलंकित करना चाहता है, या कर रहा है, उस प्रकार अर्जुन नहीं कर रहा है। अर्जुन क्या कर रहा है, अर्जुन कह रहा है कृष्ण इससे तो कुल परंपरा और कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, और दुर्योधन क्या बोल रहा है, मरने दो कुल धर्म, गया तेल लेने। हमारी लैंग्वेज में, आज की भाषा हम लोग बोलते हैं धर्म भगवद्गीता, उपदेश, जपा, चैंटिंग, मॉर्निंग मंगलारती, गया तेल लेने। कभी कभी दुर्योधन जब हमारे अंदर आ जाता है ना, तो हमारे अंदर वो भाव जागृत हो जाता है, नहीं चाहिए सब। दुर्योधन इतना लेक्चर सुने कृष्ण का, कृष्ण ने इतना सुंदर समझाया, पकड़ो इसको, नहीं चाहिए कुछ भी। और उल्टी उलट बात है एग्जैक्टली, अर्जुन क्या कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरा धर्म नष्ट नहीं होना चाहिए, कुल परंपरा नष्ट नहीं होनी चाहिए। यहां पर अर्जुन ठीक है कि उनको चिंता हो रही है, परंतु अर्जुन को केवल कुल की चिंता है और कृष्ण को धर्म की चिंता है। अर्जुन को कुल की चिंता है, कृष्ण को धर्म की चिंता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसलिए कृष्ण बार बार कह रहे कि लोभ, इसका लोभ बढ़ गया है। हे महाराज धृतराष्ट्र, आपके पुत्र को समझाइए, इसका लोभ बहुत बढ़ गया है, इसके पास ब्रेक नहीं है। इसके पास क्यों नहीं है ब्रेक? क्योंकि जन्म से ही, जन्म से तो अभी तक, आज के इस आयु तक कभी कोई प्रैक्टिस नहीं की। कौन सी प्रैक्टिस नहीं की? सदाचार की। कभी कोई भगवद गीता का क्लास नहीं सुना, कभी कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया, कभी मंदिर में नहीं गए, कभी कुछ नहीं किया। ऑटोमेटिक सेटिस्फाई नाम की चाबी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी ना। कई बार बच्चे ऐसी मिस्टेक्स करते हैं, फिर पेरेंट्स बहुत हैरान हो जाते हैं, बहुत हैरान हो जाते हैं, फिर पूछते कि प्रभु अभी बताइए क्या किया जा सकता है, अब हम क्या बताएंगे, क्या बताएंगे। कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि इतने समय तक कोई प्रैक्टिस ही नहीं हुई, तो ऑल ऑफ सडन एक दिन आप चाबी कैसे दे सकते हैं? नहीं दे सकते ना, वो तो प्रोसेस है। ब्रेक लगाना, ये इट्स अ प्रोसेस। कैप्सूल तो है नहीं, खाई कि तुरंत ब्रेक लग गए, ऐसे तो है नहीं। कैप्सूल खाई संतुष्टि आ गई, ऐसे हो नहीं सकता, उसको प्रैक्टिस करना होता है। इसलिए पहले से ही क्या करना चाहिए, जितने जल्द हो सके, जितने कम समय में हो सके, स्पिरिचुअल अवेयरनेस बढ़ाइए, अपने आप को समझने का प्रयास कीजिए, बच्चों को समझाइए। देखिए मटेरियल प्रोग्रेस तो एनी हाउ होती ही है, वो तो सीखना ही है, और सीखने वाले बहुत है, सिखाने वाले बहुत है, कितने सारी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है, करोड़ों करोड़ों है, वो तो करेंगे ही, नेचुरली बच्चे करेंगे ही। परंतु एक महत्वपूर्ण बात है, यदि ये ब्रेक लगाना नहीं सीखे, तो इसमें से कोई भी यूनिवर्सिटी उनको ब्रेक लगाना नहीं सिखाएगी। हमको क्या सिखाना है? ब्रेक लगाना। ब्रेक लगाना कैसा सिखा जा सकता है? संतुष्टि। कैसे सिखाया जा सकता है? सदाचार से, प्रैक्टिस से, अभ्यास से, अभ्यास करना होगा। तो अभ्यास करना चाहिए। इंग्लिश में ये जो वर्ड है, इसी में सारा उत्तर है। आप मुझे क्लास होने के पश्चात तुरंत पूछोगे, प्रभु क्या अभ्यास करना चाहिए? तो अब मैं उसी शब्द के ऊपर थोड़ा दो मिनट और चर्चा करता हूं। थोड़ा टेक्निकल है, आपने सुना भी होगा कई बार, ये व्यवहारिक है। सेटिस्फाई अर्थात संतुष्टि, इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फाई, SATISFY, इसी में सब कुछ आ गया। S फॉर सर्व। बच्चों में बाल्यावस्था से ही, या जब से वो समझ, थोड़ा बहुत समझने लगते, तब से ही सर्व, सेवा भाव डालिए, सर्व करना। किसी को सेवा नहीं कर सकता स्वयं की, सेल्फ सर्विस। और केवल ऐसा नहीं कि उसको लेबर के जैसा काम पे लगाए, नहीं, उस सेवा की जो डिग्निटी है, उस सेवा का जो महात्म्य है, जो इंपॉर्टेंस है वो समझाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को प्यास लगी तो उसको ये कहते आप कि आप जाके ग्लास भर पानी पी लो, आप लो ग्लास और पानी पी लो। ये काम वो जो करेगा उसकी डिग्निटी क्या है, उसका महात्म्य क्या है, वो आपको समझाना चाहिए उसको। ये जा ग्लास ले जा पानी पी के आ जाओ इंडियन स्टाइल, दैट्स नॉट द वे। सो सर्व, और हमारे लिए क्या, बड़ों के लिए क्या, बड़ों के लिए सर्व मीन्स व्हाट, सेवा अर्थात क्या, ह्यूमन काइंड सेवा से क्या होता है, मैंने कहा था आपको याद होगा तो ये आप लिखा कीजिए, पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वही वो बातें मैं बोलता हूं, आपका भी 5-7 बार हो रहेंगे तो आप बोलेंगे प्रभु जी वही वही बातें हैं, बट इट्स एवरी मोमेंट इट गिव्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शन। प्रत्येक क्षण भगवद गीता में ऐसा ही है, प्रत्येक क्षण वही बात दूसरे आस्पेक्ट में, दूसरे विषय में एकदम कुछ और देके चली जाती है। सेवा क्या देती है हमको, सेवा से क्या मिलता है, सेवा से कौन सा लाभ होता है, और अब वो मत बताइए सेवा करोगे तो मेवा पाओगे सेवा से लाभ क्या होता है, कौन सा मेवा मिलता है, आत्मसंतुष्टि, मन की शांति, दीनता बढ़ती, वेरी गुड वेरी गुड। अहंकार दूर होता है, ईगो कट होता है, अहंकार कम होते जाता है। तो सेवा अर्थात, सेवा मीन्स व्हाट, चलो कल हमारी मंदिर में, कल है हमारी सेवा है, सबको बुलाया है लास्ट पिछले रविवार को, बताया ना सबको संक्रांति की सेवा है, सम सब फूड क्या, प्रसादम फॉर ऑल फॉर एवरीवन, सबको कल पूरे मीरा रोड के लिए प्रसाद स्टेशन पे सब प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा इस्कॉन की ओर से, हमारे मंदिर की ओर से सेवा है, कल सेवा है, तो कल सेवा है तो हम पूरा प्लान करेंगे 10 बजे वहां पहुंचना है तो 9 बजे घर से निकलूंगा, रिक्शा पकड़ूंगा, ये करूंगा, गाड़ी बस ट्रेन सब करके वहां सब प्लानिंग हो गई, हो गई, दैट्स ओके। इट्स एक्सटर्नल, दैट इज एक्सटर्नल, व्हाट इज इंटरनल, वो बाहर बाह्य दृष्टिकोण है, आंतरिक दृष्टिकोण क्या है, ओ कल सेवा का मौका मिला है, मेरा अहंकार को कट करूंगा, मेरे अहंकार को गिरधारी के चरणों पे अर्पण कर दूंगा कल के दिन तो भी कम से कम या कल से प्रैक्टिस करूंगा, संक्रांति है, आई विल डू दैट, मेरे ईगो को कट करूंगा कल। सेवा है अर्थात क्या, ईगो को कम करने का अवसर है, सही है ना। सो बड़ों के लिए एस फॉर सेवा, बच्चों के लिए भी सेवा, सभी के लिए, पर आस्पेक्ट इज डिफरेंट। एस फॉर सर्व, दूसरा शब्द क्या है, ए ना, एस ए, ए अर्थात अवॉइड, व्हाट टू अवॉइड, इंप्यूरिटी, उसको संस्कृत में हम कहते हैं तामसिकता को अवॉइड कीजिए, इंप्यूरिटी अर्थात तामसिकता को अवॉइड कीजिए, थोड़ा निग्लेक्ट कीजिए, अवॉइड नहीं कर सकते बट टेम्पररीली निग्लेक्ट तो जरूर कर सकते हैं, है ना। सो निग्लेक्ट अवॉइड, बहुत सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं, कितनी चीजें हम दिन भर से सुबह से रात तक कितनी बातें ऐसी है जो हम अवॉइड कर सकते हैं, इसकी लिस्ट आप रोज लिखा कीजिए, वो आप ही कीजिए, कोई दूसरा बताने वाला नहीं है, वो आपको ही करना है, क्या मैंने किया उसमें से क्या क्या मैं अवॉइड कर सकता था, जस्ट राइट डाउन ऑन द पेपर, क्यों, क्योंकि जो अवॉइड करना है वही हमको याद रहता है, जो हमको अवॉइड करना है वो हमको याद रहता है, और जो हमको करना है वो हम भूल जाते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। कोई भी दुराचारी बात हो, असत्य बात हो, या किसी भी प्रकार का असभ्य वर्तन हो, वो फटाक से हो जाता है, प्रॉम्प्टली हो जाता है, इंस्टेंटली हो जाता है, क्यों, क्योंकि सदाचार को भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है ऐसे, क्योंकि हम कुछ भूल गए। क्या भूल गए? सदाचार भूल गए। जो नहीं भूलना चाहिए वो भूल जाते हैं, जो अवॉइड करना चाहिए, जिसका त्याग करना चाहिए उसका स्वीकार करते हैं, जिसका स्वीकार करना चाहिए उसको त्याग देते हैं, बट ये नहीं होना चाहिए। सो एस फॉर सर्व, ए फॉर अवॉइड तामसिकता, अवॉइड इम्प्यूरिटी अर्थात इम्प्योर थॉट्स, इम्प्योर बिहेवियर, इम्प्योर फूड, इम्प्योर एवरीथिंग। सो अवॉइड दैट। तीसरा क्या है? टी, ट्री अर्थात टी, टी फॉर ट्रेन योर माइंड, टी फॉर ट्रेन योर माइंड। हाउ टू ट्रेन, दैट इज द प्रॉब्लम। मन को कैसे ट्रेन किया जा सकता है? मन तो मानता ही नहीं है, मन को कैसे ट्रेन किया जा सकता है? अभ्यास से, प्रैक्टिस से। इंग्लिश में कहते हैं, आपने सुना होगा कई बार, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो प्रैक्टिस, जो आपको लग रहा है सदाचार है, ये भगवान के उपदेश है, ये धर्म है, ये इससे हमारा लाभ होने वाला है, इससे कल्याण होने वाला है, सारे संसार के लिए अच्छा है, सो प्रैक्टिस इट। उसके लिए मन को ट्रेनिंग दीजिए, अर्थात क्या कीजिए, प्रैक्टिस से मन को ट्रेनिंग प्राप्त होती है। सो ट्रेन योर माइंड, आई, एस ए टी आई, आई अर्थात ये इंग्लिश है तो मैं इसका हिंदी में अनुवाद करता हूं, आई इज फॉर इंसुलेट योर इंटेलिजेंस, इंसुलेशन इन शॉर्ट, इंसुलेशन, इंसुलेशन अर्थात सुरक्षित कवर, सुरक्षित रखने के लिए जो कवर दी जाती है, अच्छा था, इंसुलेट कीजिए उसको, अर्थात क्या कीजिए, अपने बुद्धि को इंसुलेट कीजिए, नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, कैसे हो जाएगा शॉर्ट सर्किट? क्योंकि बुद्धि में तामसिक, सात्विक और राजसिक ऐसे सारे प्रकार के प्लानिंग्स होते हैं, सारे प्रकार के प्लानिंग होते हैं, और कुछ जो तामसिक और राजसिक प्लानिंग होते हैं वो बुद्धि के लिए भी होते हैं, बुद्धि को भी प्रभावित करते हैं और अशुद्धता को भी उठा के उसके अंदर डाल देते हैं, इंप्यूरिटी को उठाते हैं बुद्धि में जमा कर देते हैं, इंप्यूरिटी को उठाते हैं बुद्धि में जमा कर देते हैं, डिपॉजिट कर देते हैं, बुद्धि उसके ऊपर प्लानिंग करना शुरू करती है। परंतु कभी कभार बुद्धि ओवरलोड हो जाती है, निर्णय नहीं ले पाती है, बुद्धि का काम निर्णय लेना है, निर्णय नहीं ले पाती है, क्योंकि इतने सारे विचार आ गए हैं, इतने सारे प्लान आ गए हैं, वो सारे के सारे प्लान इतने हेवी है, इतने स्ट्रेसफुल है, इतने इम्बैलेंस्ड है कि जिसके कारण बुद्धि में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। बुद्धि कैसी चाहिए? बुद्धि सात्विक चाहिए। सो सात्विक बुद्धि रखने के लिए उसको इंसुलेशन देना होगा, ताकि तामसिकता बुद्धि में न जाए, तामसिक प्लान बुद्धि में न जाए, इसके लिए इंसुलेशन चाहिए। सो इंसुलेट योर इंटेलिजेंस, हाउ टू इंसुलेट दैट आई विल टेल यू लेटर नेक्स्ट क्लास में, अभी 9 बज रहे हैं, थोड़ा फास्ट चलते हैं। सो इंसुलेट योर इंटेलिजेंस, अपने बुद्धि को क्या कीजिए, इंसुलेट कीजिए। फिर एस, एस अर्थात स्पिरिचुअलाइज योर डिजायर, हमारी जो इच्छा है, आकांक्षा है, कामनाएं है, उसको क्या करना है, हमको स्पिरिचुअलाइज करना है। कैसे स्पिरिचुअलाइज करेंगे? कोई होप है क्या? कोई होप है कि हमारी, तो अभी हमने ये बोला, अपनी इच्छाओं को स्पिरिचुअलाइज कीजिए, कर सकते हैं? कोई होप है? क्या होप है? हाँ, ऐसी कौन सी चीज हमारे पास है, वस्तु हमारे पास है, जिसके कारण हम होपफुल है कि हमारी डिजायर्स स्पिरिचुअलाइज हो सकती है, हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं आध्यात्मिक हो सकती है, इसको आध्यात्मिक स्पर्श हो सकता है, आध्यात्मिकता का ये पॉसिबिलिटी है, संभव है, हा? संभव है। तो ऐसी कौन सी बात हमारे अंदर है जिसके कारण ये संभव है? वेरी गुड, आत्मा, आत्मा मीन्स स्पिरिट सोल इटसेल्फ, आत्मा है इसलिए चेतना है, और चेतना है तो कोई भी इच्छा को हम आध्यात्मिक बना सकते हैं, कॉन्शियस बना सकते हैं, है ना। वी आर कॉन्शियस बिकॉज ऑफ सोल, आत्मा के कारण हम कॉन्शियस हैं। तो वो कॉन्शियसनेस क्या कर सकती है, हमारे विचारों को आध्यात्मिक बना सकती है। सो स्पिरिचुअलाइज योर डिजायर, ये कैसे, ये सारा का सारा दूसरे अध्याय में डिटेल्स है। आई एम जस्ट गिविंग यू एन इंट्रोडक्शन। अभी तो प्रश्न ही चल रहे हैं ना, उत्तर को क्यों ढूंढ रहे हैं आप। अभी तो प्रश्न चल रहे हैं, अर्जुन सारे प्रश्न ही प्रश्न पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्न ही हो रहे हैं सब। तो SATI, हाँ, तो सोल, सोल बिकॉज ऑफ सोल, बिकॉज ऑफ आत्मा, आत्मा के कारण हमको ये निश्चित आशा है कि हम अपनी इच्छाओं को स्पिरिचुअलाइज कर सकते, क्योंकि हमारी बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट विद सोल, है ना। हमारा शरीर आत्मा के संपर्क में है ना, इसलिए वो पॉसिबिलिटी है। यदि शरीर और आत्मा का संपर्क ही नहीं होता तो फिर तो फिर मुश्किल होता। परंतु ये शरीर में ये आत्मा आ गया है, इट मीन्स वॉट, इट मीन्स पॉसिबिलिटी है ना। सो SATIS, स्पिरिचुअलाइज योर डिजायर, एंड एस, ये मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन के क्लास में बोला है। एक्चुअली ये पूरा सेटिस्फाई इस शब्द का, भगवद गीता इंट्रोडक्शन, वेरी फर्स्ट फ्यू 2-3 क्लासेस, उसमें सेटिस्फाई इस की का मीनिंग बताया है। एफ एक ऐसा शब्द है जो कोई भी इसको ना नहीं बोलेगा और बड़े आराम से हाँ बोलेगा। एफ फॉर फिस्ट, फिस्टिंग, SATIS, F means feast. What? क्या feast करना है? प्रसाद खाइए। देखिए हमारा खान पान बिगड़ा हुआ होता है, इसलिए हम ब्रेक नहीं लगा पाते हैं, इसलिए अनकंट्रोल्ड गाली हो जाती है, ब्रेक फेल हो जाते हैं। खान पान तामसिक होने के कारण ब्रेक फेल हो जाते हैं। सो एक वो भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्या कहा गया है, feast on कृष्ण प्रसाद, कृष्ण प्रसाद खाइए। एंड देन वाई, SATIS, वाई अर्थात यील्ड टू गॉड्स विल, कृष्णाज विल, यील्ड टू कृष्णाज विल अर्थात कृष्ण की इच्छा के साथ साथ चलो। कृष्ण की जो इच्छा है उसके साथ कॉम्पिटिशन मत करो। दुर्योधन जैसे कर रहा है कृष्ण के साथ कॉम्पिटिशन, कृष्ण की इच्छा है धर्म की स्थापना, 4-5 गांव इनको दे दो भाई, 4-5 गांव पांडवों को दे दो, ये लोग अपना काम करेंगे, धर्म का रक्षण होगा, ये कृष्ण की इच्छा है। कौरव की, दुर्योधन की इच्छा क्या है, कॉम्पिटिशन। सो यील्ड टू कृष्णाज विल अर्थात भगवान की इच्छा के अनुसार निसर्ग के साथ साथ चलो, निसर्ग के साथ मित्रता को निभाओ, निसर्ग को चैलेंज मत करो नहीं तो सुनामी आ जाता है। कॉम्पिटिशन करोगे तो सुनामी आ जाएगा, फ्रेंडशिप करोगे तो प्रेम ही प्रेम होगा। सो यील्ड टू गॉड्स विल, कृष्णाज विल, दैट्स हाउ इज सेटिस्फाई नाम का ब्रेक। ये एक ब्रेक है जो हम अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, हमारी गाड़ी सही चलेगी। जीवन रूपी ये जो प्रवास है, ये इस मार्ग पे, जीवन मार्ग पे ये हमारा जो गाड़ी है, ये वाहन है शरीर रूपी, ये ठीक से चलेगा, नहीं तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। खाई है, खड्डे है, खाई है, भयंकर है इस रोड पे, क्या क्या नहीं है, सब कुछ है। सुंदर सुंदर गार्डन भी है, भयंकर भयंकर खाई भी है। हमारी गाड़ी चल रही है, बिना ब्रेक की होगी तो खाई में गिर जाएगी, ब्रेक होगा तो ये जो प्रवास है इसका आनंद ले सकते हो, क्योंकि गार्डन भी है इसमें। नहीं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि राजनीतिक श्रेष्ठता के लिए राजधर्म एक महान विज्ञान है। राजाओं को दानवीर बनने की महान शिक्षा दी जाती थी, न कि केवल संग्राहक बनने की। उन्हें अपनी प्रजा के संपन्नता के लिए ही यज्ञ करने की शिक्षा दी जाती थी। उस समय राजाओं की शिक्षा क्या होती थी, राजाओं को केवल दूसरों का कल्याण करने के लिए ही शिक्षा दी जाती थी, कि राजा अर्थात दूसरों का कल्याण करेगा, सभी का कल्याण करेगा, लोभी नहीं होगा, लोभ नहीं होगा। परंतु दुर्योधन में लोभ आ गया है, इसलिए धर्म का आचरण नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में और कुछ बातें बाकी है जो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और फिर आगे का श्लोक भी लेंगे नेक्स्ट क्लास में, डेढ़ श्लोकों का आज आधा हो गया है क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे एजुकेशन, शिक्षा है ना, उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।